پنکھا اور ہی پیچھے کر لیا, ادھر کیوں کیا, میرے اوپر نہیں آنا. शांति ओम शांति. आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष चार कार्य करने के लिए कहा है. बाबा ने कहा तुम बच्चों को पढ़ना है, दूसरा पवित्र बनना है, तीसरी बात बाबा ने कही कि बाप को याद करना है, और चौथी बात बाबा ने कही ड्रामा को साक्षी होकर देखना है. बाबा ने कहा कि बाप ही संगम युग पर आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते. फिर बाबा ने इसको करेक्ट किया. बाबा ने कहा बाप ही संगम युग पर आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते, ये ड्रामा अनुसार ही रचा जाता है. और ये भी ड्रामा अनुसार एक विचित्र बात है, विचित्र खेल है कि संगम युग पर रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के भी विघ्न पड़ते. बाबा ने कहा ये भी ड्रामा है, इसलिए बच्चों को क्या करना है, ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है. और ड्रामा अनुसार, ऐसा नहीं ड्रामा में जो होगा पार्ट बजाएंगे पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन बच्चों को पुरुषार्थ करना है. अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य. आज की तारीख है 18 जून 2025, और मुरली का मुख्य हेडिंग मीठे बच्चे. ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है. मीठे बच्चे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है. इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो. क्यों? क्योंकि अब घर चलना है. मीठे बच्चे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है. इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है. आज का प्रश्न है संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है. इसका उत्तर है भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते, और ज्यादा नहीं पड़ेंगे, इसमें ज्यादा पड़ते. भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं. ये भी संगम युग पर ही वंडरफुल खेल चलता है. ऐसा यज्ञ सारे कल्प में कभी नहीं रचा जाता, ऐसा यज्ञ सारे कल्प में नहीं रचा जाता. ये है राजेश्व अश्वमेध यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए. इसमें ही विघ्न पड़ते, बाकी किसी में नहीं पड़ते, क्योंकि स्वराज्य पाना है और प्राप्ति है तो उसमें ही तो विघ्न पड़ेंगे ना. तो बाबा कहते हैं इसमें ही विघ्न पड़ते हैं. ओम शांति. तुम कहाँ बैठे हो, वह पूछते हैं. इसको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते. स्कूल में बच्चे कितने अलर्ट बैठते, यूनिवर्सिटी में भी बच्चे कितने अलर्ट बैठते. खुद अलर्ट होकर के बैठो. अगर किसी को भी कोई सुस्ती आए तो एक मिनट उठ भी सकते हैं, या साथ वाला उन्हें अलर्ट भी कर सकता है. किसी को भी बाबा की मुरली में सुस्ती नहीं लानी है, ये बात का भी ध्यान रखना है. तो बाबा कहते हैं तुम कहाँ बैठे हो, इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, विश्वविद्यालय हैं जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते, उस यूनिवर्सिटी में तो अलग अलग प्रोफेसर्स होंगे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में एक ही प्रोफेसर है। वो कौन है? ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। ये तो बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते। कौन सा नशा रहे? फिर से बोलो, भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका ये यज्ञ रचा हुआ है। इनका नाम भी बाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अर्थात स्वराज्य पाने के लिए। अश्वमेध ये जो कुछ भी देखने में आते हैं उन सबको सुहा कर रहे। ये जो यज्ञ रचा है इसमें किसको सुहा करते? ये शरीर एक अश्व है, इनको भी सुहा कर रहे हैं। शरीर भी सुहा हो जाता है, आत्मा तो स्वाहा होती नहीं रहती, आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापिस भागे। जब यज्ञ कारजते हैं और ज्वाला निकलती है, आत्माएं तो अपने परम धाम में चली जाती, शरीर स्वाहा हो जाते हैं। ये है संगम युग, बहुत आत्माएं भागेंगे। समय ऐसा आएगा सब अपने घर जाएंगे ना, बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये सब है ड्रामा, तुम ड्रामा के वश चल। हर कार्य जो है ड्रामा अनुसार चल रहा है। ये सब है ड्रामा, तुम सब ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने स्वराज्य, हमने राजस्व यज्ञ रचा है। ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया, रचा बाबा ने, लेकिन कैसे? ड्रामा प्लान अनुसार। ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने ये यज्ञ रचा। अब बाबा करेक्ट करें, यज्ञ रचा गया ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने, लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने ये यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मौखिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। बाबा कहते मैं ऐसा थोड़ा यज्ञ रचूंगा जिसमें सब कुछ स्वाहा हो लेकिन इसमें कल्याण भी है, राज्य मिलना है, लेकिन ये भी ड्रामा प्लान अनुसार है। तो बाबा कहते ये भी अर्थ नहीं निकलता, ड्रामा प्लान अनुसार ही रचा गया है। ये कोई नई बात नहीं है, अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले सत्युग था, अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही हैं। कौन पवित्र बनेंगे बोलो? बाबा कहते ड्रामा की बात को बिल्कुल पक्का करें, ड्रामा प्लान अनुसार जो कल पहले बड़े हैं। तो बाबा कहते हैं बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल पहले बने थे। कल पहले वाले कौन है? हाथ खड़ा करो, ठीक है। कल पहले वाले सब बैठे ना, अभी भी बनेंगे, सब अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखो भाषा अलग है लेकिन बाबा की मुरली को समझ लेते हैं, ट्रांसलेशन भी है, अच्छी तरह से समझ रहे हैं हर बात को। तो बाबा कहते हैं कल पहले भी बने थे, अभी भी बनेंगे, और क्या कहेंगे? बच्चों को मार्ग भी बताना है, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, पुरुषार्थ करना है, औरों को भी बताना है, बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर में ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, रोज देखो मुरली के अंदर बाबा कितने पॉइंट्स देते, इतने पॉइंट्स देते हैं तो बाबा कितने बच्चों को बाबा कितने पॉइंट्स देते हैं। इसलिए बाबा हमेशा याद दिलाते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुरली में बाबा इतने ज्ञान रतन देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव, सब कुछ करो लास्ट में मन मना भाव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, ये भूलना नहीं है। बाबा को क्यों याद करते हैं पावन बनने के लिए, तो बाबा कहते ये भूलना नहीं चाहिए, जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा, चार्ट भी रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती। अब जो ऊंच पद पाना चाहता है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, तो क्या करेगा, मेहनत करेगा ना। जो लेना ही नहीं चाहता तो क्या करेगा। बाबा कहते नंबर वार जो ऊंच बनते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो बाकी थोड़े दिन है, फिर सुख के दिन आने वाले हैं। ये तो समझते हो बाकी थोड़े दिन है फिर सुख के दिन आने हैं, बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं, आकर क्या करते हैं दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम में ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम कहाँ बैठे हैं, बताओ कहाँ बैठे हैं। पहले तो बाबा ने बोला था पाठशाला है, फिर बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी, और अभी कहाँ बैठे हैं। बाबा कहते अपने ईश्वरीय परिवार, ये परिवार भी है पाठशाला भी है यूनिवर्सिटी भी है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में है, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है ये संगम युग ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे ये भी जानते हो कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल बाबा ने पहले से बता दिया था कि आगे चल करके आपके पास कौन कौन आएंगे। कोई कोई मुरली में बाबा ने कहा आपके पास राजाएं महाराजा आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, और भी जितने भी प्रोफेशन वाले हैं वो सब आएंगे। फिर बाबा ने एक बात और कह दी, ये सन्यासी भी आपके पास आएंगे। अब तो बाबा के घर आते हैं और वो भी अच्छा फील करते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, उस समय थोड़े भी थे और पुरुषार्थ कर रहे थे। बाबा ने कहा आगे चल करके तो ऐसा समय आएगा वो सब के सब आप पे आएंगे, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना निकल नहीं सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रहे हैं, क्यों नहीं आते अभी, क्योंकि उसका कारण है कि अभी पुरुषार्थ कम है, राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो बाबा कहते अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है, पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज कोई में है नहीं, ये भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, शुरू शुरू में जब मैंने आने लगी ज्ञान में और धारणाओं पर चलने लगी तो कितने विघ्न पड़े, यज्ञ में भी पड़े, माताओं पर भी पड़े। क्या होता था, अभी तो सब समझते हैं, अभी तो इतने नहीं होते, लेकिन शुरू में तो पड़े ना। तो बाबा कहती हैं ये भी बच्चे जानते हैं कि पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। अब लाओ पर बाबा के तुम सब द्रोपियां सीताएं और पार्वती माताएं तो है भाई है कि नहीं है, जो कहते भाई हम द्रौपदी है सीता है पार्वती वो हाथ खड़ा करे भाई बहने नहीं, बहने तो है ही क्योंकि ये तो विकारों की बात है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में तुम सब द्रौपदियां सीताएं और पार्वती हो, याद में रहने से अबलाएं और कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा सकते। अब देखो दुनिया में जिनको लोग ठुकराते हैं बाबा कहते केवल बाबा को याद करें तो उनको भी वर्षा मिल सकता, याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा ले लेती हैं, याद में तो रह सकती है ना और कुछ नहीं कर सकती है। तो बाबा कहते वो याद में तो रह सकती है ना, बाबा को याद कर सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। फिर क्या करते हैं कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं। उस समय की बात है, आजकल तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कराते हैं। बाबा कहते अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं, कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। पहले ऐसे करते थे, आजकल तो इस तरह से नहीं होता है, कन्याएं भी बहुत एक्टिव और इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। इसलिए पुकारती हैं हे पतित पावन आओ तो जरूर उनके लिए रथ चाहिए ना, जिसमें आकर पावन बनाएं। गंगा के पानी से पावन तो नहीं बनेंगे, बाप ही आकर के पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाए। दुनिया की हालत तो रोज नई नई बातें सुनते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बाबा कहते जो समझदार हो वो क्या कहेगा, क्यों ना हम बाबा का बन जाएं, स्वाहा हो जाएं। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, बाबा कहते हैं बाबा को पूछते एक तो कहते स्वाहा कैसे हो, फिर दूसरा कहते ट्रांसफर कैसे करें। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस साकार बाबा को तो देखते हो ना, ये खुद करके सिखा रहे। बाबा कहेंगे नहीं कैसे करो, बाबा कहते इसने जो किया बाबा ने किया मम्मा ने किया तो उनको फॉलो करो। बाबा हर बात के लिए क्या करते थे, कोई भी बात होती थी बाबा कहते नहीं थे, बाबा खुद कर्म करके दिखाते थे। मम्मा का भी ऐसे ही था, कोई भी कार्य करना होता था तो मैंने कहती थी मम्मा ये कार्य बहुत डिफिकल्ट है हम नहीं कर सकते हैं, तो मम्मा क्या करती खुद उस काम को करने लग जाती और सबकी सब बहनें मिल जाती थी वो करने लग जाती थी, सहज हो जाता था। फिर बहनें कहती थी मम्मा आपने तो इतना सहज कर दिया, तो मम्मा उस कार्य को करके दिखाती थी, बाबा भी करके दिखाते थे। तो आज भी बाबा क्या बता रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, ये खुद करके सिखा रहे हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म करवाया ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा से करवाया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया बाबा ने, सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दिया था, अपने के लिए एक पैसा तक नहीं रखा, अपने लौकिक बच्चों को भी कुछ नहीं दिया, सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दिया, सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है, ये ना बहुत साहूकार न गरीब था बाबा, हालांकि साहूकार तो थे दुनिया के भेंट में, बाबा कहते ना बहुत साहूकार ना बहुत गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना, ये है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी, इतनी जबरदस्त महिमा है, अगर वो महिमा निकालने लगो तो कितने पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बाबा कहते इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है, ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता। अब जो समर्पित हुए बाबा के बने तो उनको कुछ करना थोड़ी है, बाबा के घर में ही सारी उनकी पालना होती, शरीर निर्वाह भी होता है और सांसक मानसिक उनका भी उत्थान होता है, बहुत ज्ञान रतन भी मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वरी यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, वह ये सब कुछ ईश्वर का है। अब कौन समझते हम ट्रस्टी हैं? तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में क्या रहेगा, ये सब कुछ ईश्वर का है। तो बाबा कहते हैं जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है ना। अब परिवार में रहने वाले भी क्या समझेंगे, ये सब कुछ बाबा का है, बाबा ने दिया है, तो हम भी अपने परिवार में कहाँ से खाते भोजन, कहाँ खाते परिवार में जो कुछ भी बाबा का दे, वो बोलो कि हम भी बाबा के यज्ञ से खाते। ट्रस्टीपन की फीलिंग होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ बाबा का है, हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठ जाना है। बाबा कई बच्चे सोचेंगे बाबा के घर का भोजन खाना में यहाँ के बैठ जाना, बाबा के तो यहाँ नहीं, अपने घर में रहते हुए भी ट्रस्टी होकर के चलना है। और ट्रस्टी होकर के चलेंगे तो ये पुरुषार्थ रहेगा कि बाबा का है और बाबा के यज्ञ से खाते हैं। यहाँ तो आकर के सबको नहीं बैठना है, इसका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ सुहाग किया, इसका मीन्स ब्रह्मा बाबा का, कैसे बाबा ने अपना सब कुछ सुहाग किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म ये करता है इनको देख औरों को भी आया। शुरू में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण किया, फिर कई परिवार के परिवार थे उन्होंने भी अपना सब कुछ समर्पण किया। तो बाबा कहते हैं इसको देख करके औरों ने भी ऐसा ही किया, इनको देख औरों को भी आया, बहुत ही स्वाह हुए। जो जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर आदि सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा होंगे। तो बच्चों को समझाया जाता है, अब स्वाहा कैसे होना है बाबा उसका राज बता रहे, कैसे होना है। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से नष्टो मोहा बन जाओ, परिवार में रहो, घर में रहो, समाज संभालो, बच्चे संभालो, लेकिन कैसे चलना है, कैसे बुद्धि से नष्टो मोहा बन जाओ, बुद्धि से स्वाहा नष्टो मोहा बन जाओ। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, केवल इतना बड़ा यज्ञ सारे कल्प में एक संगम पर ही रचा जाता है। तो बाबा कहते सत्युग में वहां पर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, ना कोई उपद्रव होते हैं। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य सत्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते, बाबा बताते नशा चढ़ाते, तुम्हारे को पढ़ाने वाला कौन है? पहले बाबा ने कहा भगवान पढ़ाते, और अभी बाबा कहते ज्ञान सागर बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह ज्ञान सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं। वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे। अंतर वो गाते रहेंगे भगवान ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, बाबा कहते वो तो गाते रहते, लेकिन तुम बच्चों को बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। वह सिर्फ गाते रहते हैं, तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा कोई बहुत तो ज्ञान तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ज्ञान की बातें भी बाबा बहुत नहीं सुनाते, शॉर्ट में समझाते, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है ये सिर्फ समझाना है। यह बात तुमको खुद पढ़ा रहे हैं, कहते भी हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी तो मशहूर है ना, गायन है शास्त्रों में भागीरथ का, तो बाबा की तो मशहूर तो है, जरूर किसी के तन में तो आएंगे ना, तो भागीरथ भी तो मशहूर है, जरूर मनुष्य होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है, उनका नाम क्या है, नाम क्या है बताओ, है क्या नाम है भागीरथ का, जो जो प्रवेश करता भागीरथ में उनका नाम क्या है? अरे जोर से बोलो ना, शिव बाबा तो हमारा है, शिव बाबा को ही भूल जाते, इतना नहीं भूल सकते, फिर से बोलो शिव बाबा, उनका एक ही नाम है, कितने प्यार से बोलना चाहिए, हमारा ही तो बाबा है, अपने बाप को कैसे भूल सकते हैं। अच्छा तो फिर से बताते हैं, जिसमें बाप आएगा उनका नाम एक ही चला आता है, नाम है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदल, शिव नाम अनादि रहेगा, इसके साथ साथ अनेक नाम रख देते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये नाम नहीं बदलता है, इनका नाम नहीं बदलता है। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम रख दिए हैं, यहाँ तो है ही कौन, कौन बोलो, हाँ बोलो, यहाँ तो है ही शिव बाबा। अब शिव बाबा के लिए क्या कहेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, आगे बोलो, दूसरा ना कोई है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। शिव कल्याणकारी कहा जाता है, भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहरा ना, क्यों कल्याणकारी कहते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया की स्थापना करते, तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग जरूर बनेगा, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खेवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं, ये है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात है, तो बाबा की तो जरूर दुख के बाद सुख होगा, पुरानी दुनिया के बाद नई होगी, फिर जरूर नई दुनिया होगी, कैसे, ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, बाप की याद घड़ी घड़ी भूल जाते, बाबा कहते क्यों भूल जाते हो, बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें मेहनत है, बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। अब कई जन्मों का हिसाब किताब है, बाबा के बच्चे बन गए, योग से तो हम अपने कई जन्मों का हिसाब किताब खत्म करते हैं, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े रह जाते हैं, तो कर्म भोग के रूप में होता है, साकार में बाबा जब मुरली चलाते थे कभी कभी खांसी आती थी, तो बाबा क्या कहते थे, कभी नहीं कहते खांसी क्यों आई, कई बच्चे कहेंगे बाबा शिव बाबा को खांसी नहीं आए, बाबा कहते तो आएगी ना, ये मेरी सखी है इसको आने दो, तो कोई भी बात आती थी तो बाबा उसको इतने हल्के रीति से लेते थे, और यहाँ पर कई ऐसे हैं जरा सी बात होगी, ये बीमार है इसके लिए कुछ करो, इसके लिए कुछ करो, इसके लिए भोग लगाओ, इसके लिए, अरे अपने को योग से ही स्टेबल करना है, तो भले बाबा कहते बाबा की याद से ही अपने को ऐसा बना सकते हैं, लेकिन बाबा कैसे कहते हैं, छोटे छोटे कर्म भोग हैं ये तो आएंगे ही ना, वो तो आएंगे और चले जाएंगे, तो बाबा कहते हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है, कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी मिल नहीं सकती। आप बाबा तो शिव बाबा के कभी कभी कहते थे अगर मैं ब्रह्मा के लिए रहम करूं तो फिर क्या होगा, सबके लिए करना पड़ेगा, इसका जो छोटा बहुत कर्म है वो तो अपना चुप तो कर ही रहे हैं, तो बाबा कहते कर्म भोग की सजा जो है वो माफी नहीं हो सकती, वो लेकिन योग बल से उसको हल्का कर सकते हैं, तो बाबा कहते उसमें माफी मिल नहीं सकती, ऐसा नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, बाबा कुछ भी क्षमा नहीं करेगा, बाबा क्षमा कर देगा तो फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे, ऐसा भी नहीं कि बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि भी होती नहीं है। हिसाब किताब चुकटू तो करना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती रहती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते, श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से बाबा कहते तुम श्री बनते हो। ऊंच से ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, तुम अभी बन रहे हो। अभी तुमको स्मृति आई है, बाबा कलप कलप आकर हमको पढ़ाते, कलप हर कलप में आते हैं, कलप कलप आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कलप उनकी प्रारब्ध मिलती, जो पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं उसकी जो प्राप्ति होती है आधा कलप उसकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती है। कलप कलप एक ही बार आकर के बतलाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है, अब क्या क्या काम है, पहला काम है पढ़ना और दूसरा पवित्र बनना, तीसरा बाप की याद में, और चौथा ब्राह्मण को है। तो बाबा कहती हैं तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना। बाप के बनकर पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। बाबा के बने इतना सब अच्छी तरह चलते, फिर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो बाबा का भी नाम बदनाम होता है, खुद का भी होता है, यज्ञ का भी होता है। गाते भी हैं कि सतगुरु का निंदक ठोड़ न पाए। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि ये कौन है। सत बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना, तुमको पढ़ाते हुए है सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुम भी कौन हो, कौन अपना टाइटल याद करो, जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुम कौन हो, है कोई नदियां नाले है क्या, यह सागर है जो कि हम नदी बात करा करो, कोई नहीं है। जो कि हम नाले है, कोई कि हम छोटा पाउंड है, नहीं ना। सब कौन है, मास्टर ज्ञान सागर। तो बाबा कहते हैं तुम भी ज्ञान सागर के हो ना, बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया, खुद भी बाप ज्ञान का सागर है, बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बना देते। क्यों, बाबा कहते बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कलप पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। अभी बाबा ने एक उदाहरण और दिया, कोई कितना भी कहे हम सन्यासी बन गए हैं, बाबा ने कहा ये हठ योग करना ये भी तो कर्म है ना, कर्म, सांस लेना कर्म है, बोलना कर्म है, खाना कर, कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। कितना भी हठ योग आदि करते हैं वह भी तो कर्म है ना, ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते, सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए, लेकिन इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। कोई कितने भी आर्ट दिखाए लेकिन वो आर्ट्स जो है देखने के लिए अच्छे हैं, लेकिन फायदा क्या, आत्मा तो प्योर नहीं बनती ना, सिर्फ उड़ नहीं सकते, इसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए, लेकिन इससे फायदा तो कुछ भी नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है कौन सी, साइलेंस की रेस, कंपटीशन। वो साइंस की रेस और जितना साइलेंस की रेस तेज उतना साइंस की रेस भी तेज होती है। उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। सब शांति मांगते हैं, बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम, ये है दुख धाम, हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुख धाम खलास होना है, होना तो है ना, आज नहीं तो कल तो होना ही है, ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को भी धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज है ये पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं, कई क्या है ये पढ़ाई भी पढ़ते हैं लेकिन लौकिक में बहुत ज्यादा पढ़ाई में इधर की उधर की पता नहीं कितनी पढ़ाइयां लेकर के बैठ जाते हैं तो सारी एनर्जी उसमें जाती है और इस अलौकिक पढ़ाई के लिए फिर कम टाइम मिलता है। तो बाबा कहते हैं उस पढ़ाई से क्या मिलता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़, वो नाम मत जरूर पढ़ना है क्योंकि उसके से बहुत कुछ नॉलेज मिलती है लेकिन ज्यादा टाइम इस ईश्वरीय पढ़ाई में लगाना। तो बाबा कहते हैं जो तकदीरवान बच्चे क्या करेंगे, जो तकदीरवान बच्चे हैं वो फौरन निर्णय ले लेते हैं हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है तो ख्याल करना चाहिए हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाए, मीन्स बेहद की पढ़ाई पर अच्छा अटेंशन देते। जिनको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो वह उस पढ़ाई में चटक पड़। अभी भी पता नहीं कौन कौन से कोर्सेस करते रहते हैं, ये कोर्स करेंगे हम ये करेंगे तो हमारे को अच्छा भाषण करने का मौका मिलेगा। अरे बाबा का ज्ञान इतना पावरफुल, उसके आगे तो कोई भी कोर्स कुछ भी नहीं है। कोर्स में कितना टाइम एनर्जी देते हैं, बाबा कहते भल करो लेकिन पूरा अटेंशन किस पे जाए, ईश्वरीय पढ़ाई पर। बाहर के भी कई कोर्सेज हैं, उसमें जाके कोई नौकरी थोड़ी करनी है, केवल एक ही बात के लिए हम फलानी कंपनी में जाएंगे, फलानी स्थान पर जाएंगे, भाषण करेंगे। अरे कंपनी वालों से तो बाबा के बच्चे अच्छा भाषण कर लेते हैं, तो ये बात का भी सबको जरा ध्यान रखना है कि मेन अटेंशन जो है बाबा की पढ़ाई पर। दादियों ने क्या किया, मेन अटेंशन उनका केवल बाबा की पढ़ाई पर। बाहर के कोर्सेस आदि पर तो दादियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया ना। तो बाबा कह रहे हैं परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो वह उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है, उसमें लग जाएंगे, कहेंगे टाइम ही नहीं है, कहेंगे फुर्सत नहीं मिलती है। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी है, अब कौन सी नॉलेज कहेंगे, बाबा पूछते थे कौन सी नॉलेज अच्छी है, उसमें क्या मिलेगा और इससे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे, शरीर निर्वाह थोड़ा तो करना ही है लेकिन बुद्धि तो रमाना चली जाए ना। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हमको तो पढ़ करके राजाए, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा जिनको नहीं पढ़ना तकदीर में नहीं, कहेंगे बाबा पहले हम वो कोर्स पूरा कर ले फिर आ जाएंगे। बाबा कहेंगे ना ये कोर्स पूरा हो, एक के बाद दूसरा तीसरा, ना टाइम मिलेगा ना आएगा। कोई कहते हैं फिर कहते बाबा ये कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना। जिसकी तकदीर में होगा ना वो ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ करेगा, जिसकी तकदीर में नहीं होगा तो वो क्या करेगा, 10 बहाने, ये है बाबा, ये है बाबा, ऐसे होता है। तो बाबा कहते हैं आगे चल देखेंगे, समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं। किसको मालूम है क्या हो जाता है, समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। ये भी पता है दुनिया में देख रहे अचानक क्या क्या होता रहता है, तो बाबा कहते तो होना ही है लेकिन क्या करना है कि अपनी कमाई तो करनी है ना, तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वह अपनी तदबीर जगाएंगे, वह अपनी तकदीर भी जगाएंगे और तदबीर भी करेंगे, पूरा जोर लगाना है। हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है, हम बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं, तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म हम पवित्र थोड़ी बोलते हैं। अब आप देखिए बाबा के सब बच्चे पूरी धारणों पर चलते हैं, तो बाबा कहते कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं। अब बाहर वाले देखते हैं कि इतने सारे इतनी धारणाओं को पालन करते हैं, अपने पास कई विद्वान आते हुए आकर देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि इतने सारे हैं जो सब प्रकार की धारणाओं को पालन करते हैं, और बाबा को भी अच्छा ही लगता था और बाहर वालों को भी अच्छा लगता है। वो समझ आते थे देखो कितनी अच्छी बात है बाबा के टाइम पर। फिर बाद में दादी ने खास एक बार बाल ब्रह्मचर्यों को बुलाया था, महात्माओं के सामने उनको बिठाया था, उनको देख के अच्छा लगता था कि कैसे इनके अंदर इतनी ताकत बाबा ने भरी कि सबके सब पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ी बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते दुनिया वालों की बात। बाबा कहते इतने पढ़ रहे हैं, इतने सब आ रहे हैं, कई कई ऐसे जो विश्वास नहीं करते, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है। कौन सा? जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी हैं। सत्युग में होता है एक धर्म, ये भी तुम्हारी बुद्धि में। सत्युग में है ही एक धर्म, तो क्या ये भी तुम्हारी बुद्धि में है? तुम्हारे में भी अभी भी कोई ऐसे कैसे हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जन कर रहे, कई हैं जिनको पक्का निश्चय, और कई हैं थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी निश्चय को निश्चय बैठा रहे है नहीं है ना। सबको तो निश्चय है ना, जिनको निश्चय हाथ खड़ा करो, सब निश्चय बुद्धि है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जन कर रहे हैं, सोचते हैं ज्ञान ले या ना ले, ज्ञान अच्छा या नहीं है। अरे निश्चय करने के में टाइम लगता है क्या? बच्चा पैदा हो ये मेरा बाप है थोड़ी निश्चय में टाइम लगेगा। बाबा कहते हैं अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर क्या भरोसा है? भरोसा क्या से क्या हो जाता है? जरा सी चांस गंवाना नहीं चाहिए। बाबा कहते पढ़ाई के लिए जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। जिसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं। रिजल्ट भी बता दिया, जिसकी तकदीर में वो हर प्रकार से पुरुषार्थ करेगा, और जिसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा नष्टो मोह बनकर अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर। नष्टो मोह बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाबा को फॉलो करना, साकार बाप को फॉलो करना है आज का वरदान। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव, जैसे ये नशा सब कुछ भुला देता है। लौकिक दुनिया का नशा जो है क्या होता है, जैसे ही वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता। बाबा कहते जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, जब वो नशा करते उनको पता ही नहीं पड़ता क्या से क्या हो जाता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ा दे। कौन सा नशा चढ़ा सकते, एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इस स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। आज का व्यक्ति शारा, आत्मीय स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की गहरता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। आज का प्यारी मम्मा की विशेषताएं, मम्मा की तो बहुत विशेषताएं हैं, आज की भी विशेषता का बताते हैं। आज है 18 तारीख बुधवार, मम्मा की विशेषता सदा एक्यूरेसी के गुण से, सदा एक्यूरेसी के गुण से मर्यादाओं में चलने की शक्ति। मम्मा हमें हर बात में एक्यूरेट थे, सदा एक्यूरेसी के गुण से मर्यादाओं में चलने की शक्ति। मम्मा ने हर श्रीमत को एक्यूरेट पालन किया और दूसरों से कराया, खुद भी किया औरों से भी कराया। मम्मा ने हर श्रीमत को एक्यूरेट पालन किया और दूसरों से कराया। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी मन वचन कर्म के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, एक्यूरेट रहने के कारण मर्यादाओं को पालन करने की शक्ति आ गई। अगर हम अपनी दिनचर्या में श्रीमत में एक्यूरेट रहते हैं तो मर्यादाओं पर चलना सहज होता है। ये मर्यादा ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हम इस बात की भी खुशी हैं कि बाबा के घर में बाबा की बहुत लाडले, बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं। बाबा हमेशा कहते थे, अच्छा एक सूचना है कि 20 जून को शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से ग्लोबल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जो भी भाई बहने रक्तदान करना चाहते हैं वह अवश्य जाएं। समय है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और ओम शांति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही और ग्लोबल हॉस्पिटल दोनों मिलकर कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं बाबा के लाडले बच्चों को, बाबा इन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। भट्टी वाले सब हाथ उठाओ, इनके लिए ताली बजाओ। इनकी विशेषता क्या है मालूम है? भाषा नहीं जानते लेकिन प्यार की भाषा ज्यादा जानते। बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना तो बाबा हमेशा कहते थे ये भल दूसरी भाषा इस कलयुग की दुनिया की है लेकिन बाबा की भाषा, बाबा के साथ जो प्यार है वो इनका बहुत ज्यादा है। और जितना प्यार से बाबा को लगता था ये बाबा के भोले भाले बच्चे हैं। और बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जो भी भोला नाथ बाबा हैं तो उनको सब भोले बच्चे ही प्रिय हैं। सब बाबा के प्यारे हो ना, हाथ बताओ, लाडले हो ना, बाबा को बता रहे ये बाबा के प्यारे हैं। मैं बताऊं या आप बताएंगे? हैं, कौन बताएगा? मैं तो नहीं बताऊंगी, हरे को अपना बताना, ठीक है? हरेक अपने बाबा से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको करते हैं ना, तो बाबा से मीठी मीठी रूहान करते हैं। और मैं समझती हूँ बहुत समय के बाद ये वारंगल का ग्रुप यहाँ पर, वारंगल सब जोन का बट्टी करने के लिए आया है बहुत समय के बाद। लेकिन बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बाबा भी आपको देख रहे हैं और आपके लिए विशेष इंद्रदेव भी आपका स्वागत कर रहा है ना? हल्की हल्की गुलाबबाशी हो रही है तो इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, सब ठीक है? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाबा के घर में क्या प्रॉब्लम हो गई? तीन पैर पृथ्वी मिल गई और क्या चाहिए? कहाँ रहने को नहीं मिलता, लेकिन बट्टी वालों को तो पांच पांच दिन रहने का मिलता, और क्या चाहिए? ठीक है ना? अभी मौसम थोड़ा बदला, किसको ठंड तो नहीं लगती? क्योंकि वह गर्म जगह रहते हैं ना, थोड़ी ठंडी लगती होगी, नहीं ना? हाँ, क्योंकि यहाँ अभी थोड़ा, बाकी ऐसा नहीं है, थोड़ी फागी है। तो वैसे लोग इस फागी को देखने के लिए पता कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पर जाते हैं। और ये फागी जो है आपके लिए आई है। क्यों आई है? सूक्ष्म वतन में जाओ। सूक्ष्म वतन में चारों तरफ को क्या दिखाई दे? लाइट ही लाइट है। तो फागी में भी क्या देखेंगे? लाइट ही लाइट देखेंगे ना। तो इसलिए इसका भी विशेष अनुभव करो, बाबा के प्यार का अनुभव करो, मधुबन का अनुभव करो, सूक्ष्म वतन का अनुभव करो और बाबा से मीठी मीठी रूहान करो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। उसकी बाद भट्टी वालों के लिए एक अनाउंसमेंट है, अभी बता देती हूँ। पहले से अनाउंसमेंट है फोटोग्राफी डिपार्टमेंट से, मम्मा बाबा श्री बाबा श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण बाबा ट्रांसलाइट वरदान और हिस्ट्री हॉल के जो भी बाबा के फोटो है, साकार बाबा के हिस्ट्री हॉल के फोटो और उसकी सारे फोटोज फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में उपलब्ध है। जिस किसी को ये फोटो चाहिए ना तो उसकी टाइमिंग है, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है ये डाइनिंग हॉल के नीचे, उसकी टाइमिंग है सुबह 8:30 से 12 बजे के बीच में। जिस किसी को ये फोटो चाहिए तो वहाँ जाकर के ले सकते हैं। बाबा मम्मा दादियाँ एडवांस पार्टी लक्ष्मी नारायण हिस्ट्री हॉल के साकार बाबा के फोटो स्लोगन आदि सब उपलब्ध है। जिसको चाहिए तो वो डाइनिंग हॉल के नीचे फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाकर के ले सकते हैं। टाइमिंग है सुबह 8:30 से 12 बजे के बीच में। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।